તારીખ 28/5/1996 શ્રી સમયસર કલષ્ટિકા શ્લોક નંબર 156 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 91.
મેં કરને વાલા નહીં હું मैं सिर्फ एक आत्मा ही आत्मा हूँ, न मैं बालक हूँ, न मैं युवान हूँ, न मैं वृद्ध हूँ, क्योंकि ये तो शरीर की अवस्था है। वरुण, बालक किसकी अवस्था है? बालक बालक है आप? बालक तुम बालक हो क्या? बालक नहीं, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। बालक नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। बालक फिर बालक कौन है? मैं आत्मा हूँ और बालक नहीं है, तो फिर बालक कौन है? शरीर, शरीर बालक है, चेतन पना है, वो बालक है। आत्मा बालक नहीं, आत्मा वृद्ध भी नहीं, आत्मा युवान भी नहीं। इसलिए मैं अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभव करता हूं निरंतर, उसमें कोई बीच में दूसरी कल्पना बीच में करता नहीं हूं। उदय आए तो, उदय आए तो उसके भिन्न रूप में ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा अनुभव करता हूं। विंदति का अर्थ अनुभवता है, ऐसा ज्ञान। विंदति का अर्थ जानता है, ऐसा नहीं ज्ञान, अनुभव करता है। कैसा है ज्ञान? के सहजम स्वभाव से ही उत्पन्न है। मेरा ज्ञान मेरे स्वभाव से ही उत्पन्न है। कोई दूसरा बीच में नई बात मेरे में आई है, वो बात नहीं है। मेरा ज्ञान तो मेरे स्वभाव से ही उत्पन्न है, लाना नहीं पड़ता, ज्ञान को उत्पन्न नहीं करना पड़ता, स्वभाव से ही उत्पन्न है। कैसा है सम्यक दृष्टि भी? इन्हीं शंका सात भयों से मुक्त है, निशंक है, शंका भी नहीं पड़ती। भय तो कहां से होगा? पहले शंका होती है तो भय होता है, जब शंका ही नहीं तो भय कहां से होगा? भय तो शंका की प्रोडक्ट है, उत्पन्न होता है। शंका होती है तो भय होता है, जब शंका ही नहीं तो भय भी नहीं है। कैसा है सम्यक दृष्टि जीव? के साथ भयों से मुक्त है। नानी न तदवी कुतः? सम्यक दृष्टि जीव को तद भी मैंने वेदना भय कहाँ से हो गए? उपलब्ध में वेदना भय का इस प्रकार का भय, मैंने वेदना का भय कहाँ से हो गए? अब भी तो नहीं होता है, यानी को वेदना का भय, मुझे कोई बड़ा रोग आ जाएगा इस कारण से मुझे बहुत वेदना होगी, तो मुझे बहुत दुख होगा, ऐसी शंका नहीं होती और ऐसा भय भी नहीं होता। तुम्हें दृष्टि को रोग नहीं होता होगा क्या? तुम्हें दृष्टि के शरीर को रोग होता है, ऐसा तो मुनि दशा में मुनि के शरीर को भी रोग होता है, और रोग होता है तो पछताता उत्पन्न होती है, और असाता का वेदन भी शरीर के पर्याय में परिणम रूप होता है। ज्ञानी उन्हें उसको जानता है। कैसे जानता है? कि मेरे से बाह्य है, मेरे स्वरूप में नहीं है, और वो वेदना की जो अवस्था है शरीर की, मेरे में आती नहीं है। मैं जानता हूं लेकिन मैं अनुभव करता नहीं। जानना एक बात है, अनुभव करना बिल्कुल दूसरी बात है। वेदना का भय कहाँ से होवे? कि नहीं होता है कारण कि सदा अनाकुले है, सर्वदा भेद ज्ञान से विराजमान है जो पुरुष। अनाकुल को क्या बैठे, अनाकुल शब्द में से भेद ज्ञान लिया है। क्यों निराकुल है, क्यों अनाकुल है, क्यों सुखी है? भेद ज्ञान, भेद ज्ञान से विराजमान है वो। तो तुम्हें दृष्टि भेद ज्ञान करता है, ऐसा सादा सादी भाषा नहीं लिया, बहुमान की भाषा लिया है कि सर्वदा भेद ज्ञान से विराजमान है जो पुरुष। पुरुष मैंने आत्मा, पुरुष मैंने पुरुष पर्याय वाला जीव, ऐसा नहीं लेना है। स्त्री पर्याय वाला जीव हो तो भी उसको साथ करता है, इसलिए उनको पुरुष कहने में आता है। अंतर्मुख उपयोग में तो जानपना भी वेदना का नहीं रहता। बहिर्मुख उपयोग होता है तो वेदना का ज्ञान होता है। इस प्रकार से जो भिन्न रूप वेदना है, ऐसा ज्ञान होता है। वेदना का भिन्न रूप से ज्ञान होता है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और मेरे से भिन्न ज्ञेय रूप वेदना है, वो तो वेदना को मैं भिन्न रह करके जानता हूँ, ऐसा अनुभव आता है। तो वेदता है किसको? अपने ज्ञान को वेदता है। नानम सदा विंदति, अपने शुद्ध स्वरूप को, ज्ञान मैंने शुद्ध स्वरूप को वेदन करता है और शरीर की वेदना को जानता है, वेदन नहीं करता। कैसे वेदन नहीं करता? हाँ, अस्तित्व अस्तित्व भिन्न अस्तित्व भिन्न रूप अनुभव गोचर होता है। जो मेरा ज्ञानमय अस्तित्व है वो भिन्न है तो भिन्न रूप अनुभव में आता है। वेदना से कोई संबंध करता है, मेरा ज्ञान भी संबंध करता है, तो बात नहीं। बहिर्मुख उपयोग होवे तो भी वो बहिर्मुख उपयोग वेदना से एकत्र करता कर लेता है, ऐसा नहीं बनता, भिन्न रहता है। तो सम्यक दृष्टि को वेदना का भय और आकुलता और दुख क्यों नहीं होता है? कि भेद ज्ञान से विराजमान है, इसलिए भिन्न पड़ता है। ऐसा जो पुरुष है, वे पुरुष स्वयं वेद्य थे, स्वयं ऐसा अनुभव करते हैं, अपनी शक्ति से, अपने स्वभाव से ऐसा अनुभव करते हैं कि यत अचलम ज्ञानम ऐसा एक एव वेदना, मेरी वेदना तो मेरा ज्ञान है। जिस कारण से शाश्वत है जो ज्ञान, यही एक जीव को एक वेदना है। वेदना मैंने वेदन करने की वर्तमान पर्याय को वेदना कहते हैं। ठीक है, यहाँ ज्ञान वेदना को वेदना बताइए। क्यों? अनुभव में आने योग्य, वेदन में आने योग्य ऐसी अवस्था, उसको कहते हैं वेदना। तो मेरे अनुभव में तो मेरा ज्ञान ही वेदन में आता है, और मेरे वेदन में दूसरी कोई चीज आती तो संवेदन, ज्ञान का, स्वयं का, अपने आप का, अपने में वेदन, उसको कहते हैं तो संवेदन। तो मुझे तो मेरा ज्ञान वेदन की वेदना में आता है, है? हाँ सदा है ना। क्या कहते हैं कि जिस कारण से शाश्वत है जो ज्ञान, यही एक वेदना, यही जीव को एक वेदना है, अपना ज्ञान ही अपनी वेदना है, वेदन में आने योग्य अवस्था। वेदना माने वेदन में आने योग्य अवस्था। मेरा ज्ञान ही मेरी वेदना है, शरीर की अवस्था मेरी वेदना नहीं है। निश्चय है मैंने वास्तव में खरेखर वास्तविक रूप से मेरा ज्ञान वेदन ही मेरी वेदना है, और मैं निरंतर स्वभाव से ही सदा ही तीनों काल उसका ही वेदन करता हूं। अज्ञान अवस्था में भी अज्ञान अवस्था में मालूम नहीं पड़ता था, बाकी दूसरा पदार्थ को मैं वेदन कर सकता नहीं, मान लिया था कि मैंने शरीर को वेदन किया, ऐसा होता नहीं था, हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो सकता भी नहीं है। अचलम ज्ञानम, मेरा ज्ञान है वो कभी चलित होता नहीं है, ज्ञान वेदन से ज्ञान चलित नहीं होता। आत्मा का ज्ञान ज्ञान वेदन से विचलित होता नहीं है, सदा ही ज्ञान वेदन रूप ही रहता है। इसलिए स्वसंवेदन करना है वो बात रहती नहीं है। जो ज्ञान वेदन हो रहा है उनको अवलोकन में लेना है कि ये हो रहा है, बस उसी बात है, करने वरने का सवाल है ही नहीं, किंतु तो सहज स्वभाव से हो ही रहा है। आसानी अपना काम है और स्वभावगत कार्य है, फिर उसमें कठिनाई कौन सी, तो उसमें कोई कठिनाई है नहीं। जो अशक्य है उनको सत्य करने में अपने को कठिनाई नहीं लगती, जैसे पर पदार्थ में सुख नहीं और ज्ञान नहीं, तो उनसे ज्ञान और सुख को लेने का प्रयास करते हैं, उसमें कठिनाई नहीं लगती। और जहाँ ज्ञान सुख भरा है वहां से ज्ञान सुख लेने में अपने को कठिनता लगती है, ये तो विपरीतता है, ये बिल्कुल विपरीतता है। वो आसान तो बताते हैं ज्ञान, देखो तो बहुत आसान काम है, तुमको उत्साह आना चाहिए। बंधन का दुख अनुभव करते करते तुम थके हो तो मुक्त होने का उत्साह आए बिना नहीं रहेगा। एक दुर्गे दृष्टांत देते थे, तो वो गाय का बछड़ा होता है फ्रेश बॉर्न, ताजा जन्म हुआ हो, वो भी उनको जो शाम को दूध दुहते हैं ना, उसको तुमको छोड़ते हैं, सारे दिन उसको बांध करके रखते हैं। क्यों? कि उनको वो समझ नहीं है तो घर में दो, अगर उसको बांधेगा नहीं तो घर में तूफान मचाएगा, तोड़ फोड़ करेगा, बच्चा है वो, इधर घूमेगा उधर घूमेगा, तोड़ फोड़ कर देगा। तो उनको बांध कर रखते हैं सारे दिन, जब उनकी दूरी छोड़ने का कोशिश करते हैं उस वक्त तो चारों पैर से कूदने लग जाता है, बहुत कूदता है। क्यों? तो उनको पता चल गया कि अब मेरी मुक्ति होगी, तो मुक्त होने का आसार आता है, उसको अनुमान आता है, अग्नि पंचेंद्रिय है ना, बहुत कूदने लगता है, बहुत कूदने लगता है। अब श्री गुरु कहते हैं कि तेरे मुक्त होने की बात हो रही है, तेरी बंधन की डोरी छोड़ रहे हैं, तो तुझे उत्साह क्यों नहीं आता? तुझे बहुत उत्साह आना चाहिए। अगर उत्साह नहीं आता है, मुक्ति के वचनों को सुन करके भी उत्साह नहीं आता है, वो बछड़े में से भी गया बिता है, उतना भी उनको बुद्धि नहीं है, ऐसी बात है। बात बात स्पष्ट आती है, फिर क्यों नहीं लगता है? लगना चाहिए क्या? बात ऐसी आती है तो लगना ही चाहिए। अन्य आगत वेदना एवं न भवे, अन्य मैंने इसे छोड़कर, ज्ञान वेदन को छोड़ करके जो अन्य कर्म के उदय से हुई है सुखरूप अथवा दुखरूप वेदना जीव को है ही नहीं, सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा अनुभव है कि जो कर्म के उदय से साता असाता सुख रूप दुख रूप जो आगत वेदना आने वाली जो वेदना है वो तो है ही नहीं, वो तो मुझे है ही नहीं, तो मुझे कहाँ होती है, मेरे में कहाँ होती है? तो होती नहीं ना, जिनको है ही नहीं, वो सम्यक दृष्टि का ज्ञान कैसा है? एक हम शाश्वत है और एक रूप है, एक रूप ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं, अनेक रूप ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा है। देखो हाँ, ज्ञान ज्ञाकार भी होता है और ज्ञानाकार भी होता है, ज्ञान का दो रूप है, ज्ञान का दो रूप है, अनेक आकृति ज्ञान में वो पैदा होती है, जैसे जैसे इन्हें जानने में आता है उस रूप ज्ञान की पर्याय होने लगती है, वो भी एक ज्ञान का रूप है। और एक भी आकृति नहीं हो ऐसा भी एक ज्ञान का रूप है, दोनों एक साथ है, दर्पण वक्त, जैसे दर्पण में अनेक चीजें दिखाई देती हैं और एक दर्पण की सामान्य अवस्था है, दो है कि नहीं एक साथ? अगर सामान्य नहीं होती तो विशेष अवस्था होती नहीं, अनेक आकृति आती नहीं, और एक आकृति छुप करके दूसरी आकृति होती है, इसका मतलब क्या? कि जो आकृति हुई वो कायमी चीज नहीं थी, तो एक रूपता है वो कायमी है, और आत्मा का स्वरूप भी एक रूप होने से ज्ञान का अनेकाकार के साथ आत्मस्वरूप की सुसंगतता नहीं है। ज्ञान का जो एक रूप है इसके साथ ज्ञान की सुसंगत आत्मा के स्वरूप की सुसंगतता है, इसलिए अनेक रूप ज्ञान है और एक रूप ज्ञान है उसमें भी अनेक रूप गौण करने योग्य है और एक रूप मुख्य करने योग्य है। नेह की तो चर्चा ही नहीं है, ये ज्ञान की चर्चा हो रही है, नेह की चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि नेह तो सर्वथा भिन्न है। अब जो ज्ञान में ही दो बात है तो दोनों एक सी नहीं है, एक स्वरूप के साथ मेल खाती है, एक स्वरूप के साथ मेल नहीं खाती है, ऐसी अवस्था है। तो जो स्वरूप के साथ मेल नहीं खाती है, विसंगत है, उसको गौण कर देना चाहिए, उसको मिटा नहीं सकते, उसको मिटा नहीं सकते, लेकिन गौण कर सकते हैं। क्या वस्तु के स्वरूप को नहीं जानता? जो ज्ञान में से नेह की आकृति को मिटाना चाहते हैं वो वस्तु का स्वरूप को नहीं जानता, क्योंकि वो तो ज्ञान का रूप है। उस सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य महाराज ने वो अथवा सूत्र की टीका है उसमें वो बात लिखा है कि ज्ञान का दो रूप है, ज्ञेयाकार ज्ञानाकार, ज्ञान द्विरूपम, दो रूप है उसका, ज्ञेयाकार भी है और ज्ञानाकार भी है। तो उसका रूप है उसको मिटाओगे कैसे? गौण कर सकते हो, प्रयोजन वश उसको गौण किया जाता है, क्योंकि परस्पर विरुद्ध है, एक रूप से अनेक रूप विरुद्ध है। इसलिए दूसरे बात उसके उसको बहुत अच्छी तरह लेते हैं, कोई जीव ऐसा गलत अभिप्राय रख करके सोचे कि मुझे वो नहीं पसंद नहीं है, यानी मुझे गेय को जानना नहीं है, अन्य गेय को जानना नहीं है, इसका मतलब कि उस काल में उस नयाकार होने वाला ज्ञान उसका वो निषेध करता है, नेह का निषेध नहीं करता है, अपना ज्ञान का वो निषेध करता है। और वो ऐसे लेते थे कि जिस काल में ज्ञान की जिस नयाकार रूप अवस्था होने वाली है तो उस काल में होगी होगी और होगी ही। अब तुम इस अवस्था को निकाल देना चाहते हैं, इसका मतलब कि आत्मा को निकाल देना, अपने ज्ञान को निकाल देना चाहते हैं, तो वो भ्रांति में है। ऐसा कभी हो सकता नहीं, क्यों तो वस्तु का स्वरूप को नहीं जानता है उसको ही ऐसा होता है, जो वस्तु के स्वरूप को जानता है वो ऐसी कल्पना में चढ़ता नहीं है कि मैं ज्ञान में से ज्ञेय को निकाल दूं, मैं ज्ञान में से ज्ञेय को निकाल दूं। बात तो वहां से आई है कि किसी भी ज्ञेय को ज्ञान में जानते वक्त जो अपने ज्ञान से ज्ञान के अनुभव से च्युत होता है, वो ज्ञेय का अवलंबन लेकर के भाव में द्रव से नहीं हो सकता, अवलंबन लेकर के विभाव रूप विकार रूप परिणमन कर लेता है। अब निर्दोष होना है, विकार को मिटाना है, तो क्या उल्टा उल्टी पद्धति उल्टी कार्य पद्धति में जाता है कि मैं ज्ञान में से ज्ञेय को मिटा दूं तो ही मेरा विकार मिटेगा? उस पद्धति में वो जाता है तो सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ दी, गुरदासा दर्शन का ऐतिहासिक है, बिल्व मंगल नाम था उसका। तो उनको ऐसा लगा कि मैं आंख से देखता हूँ स्त्री को तो मुझे विकार होता है, तो मेरी आंखें में फोड़ दूंगा तो फिर मुझे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे जो ज्ञान में से गेय निकालना चाहता है वो ज्ञान की आंख फोड़ना चाहता है, लेकिन वो फूटेगी तो नहीं, ये आंख फूट सकती है, लेकिन ये आंख फूटने के बाद भी अंदर दिखने की दिखेगी तो क्या करोगे? ज्ञान की आंख तो फूटेगी नहीं और फिर कल्पना में देखने में आएगी, क्या करोगे? तो उस तरह से विभाव मिटाने की युक्ति है, उपाय है, वो तो सही नहीं है, गलत है, वो मिथ्या है। उपाय वो है कि उसको गौण करो, मुख्य गौण तो तुम कर सकते हो, मुख्य गौण करना हो तो ज्ञान का स्वभाव है और हर समय तुम कर ही रहे हो, जब जब जो काम करते हो उस काम की मुख्यता तुम करते हो, और जो काम नहीं करते हो इसकी गौणता रहती है, काम तो बहुत है आपके पास, एक काम तो नहीं है सारे दिन में, लेकिन जिस वक्त जो काम करना है उसकी मुख्यता करते हो, बाकी के काम की गौणता तो करते ही हो। ऐसे यहां भी ऐसा करो, गौण कर दो, बात खत्म, जैसे करते हो वैसे, अब कैसे करते हो देख लो, ये तो प्रयोग है तुम्हारा, अब जिस प्रयोग से तुम मुख्य गौण करते हो उसी प्रयोग से करो। देखो अपनापन होता है वहां मुख्यता, सामान्य में अपनत्व करो ज्ञान विशेष गौण हो जाएगा, और ज्ञान विशेष में अपनत्व करते हो तो ज्ञान सामान्य गौण हो ही रहा है, तो आप कर ही रहे हो, मुख्य गुण तो कर ही रहे हो, ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष दो है, दोनों में मुख्यता हो सकती है, दोनों में गौणता भी हो सकती है। अभी ज्ञान सामान्य गौण हो रहा है, ज्ञान विशेष मुख्य हो रहा है, उल्टा करो, मुख्यता से देख रहा है कि नहीं देख रहा है, पर पदार्थ की मुख्यता को लेकर के प्रतिबिंब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो चालू है क्या? नहीं देखो नहीं दिख रहा है, इसलिए कि तुम देखते नहीं है इसलिए नहीं देख रहे दिख रहा है, अखबार में व्यापार से पेज आता है इसमें भाव लिखे हुए होते हैं, होते हैं या समाचार होते हैं व्यापार विषय, हमारा प्रयोजन नहीं है तो गौण हो जाता है, शेर के भाव आते हैं कि नहीं, तो जिस कंपनी का हमारा शेर है हमारे पास है उसका भाव देखेंगे, ऊपर नीचे वाला देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे पढ़ना, क्यों? अपनत्व है वहां ही हमको मुख्यता है, तो ज्ञान विशेष में अपने प्रकार रखा है, अब ज्ञान सामान्य में करो बस मुख्यता हो जाएगी, और अपने अपने में रस आता है
वो अपने पेड़ पर उसमें रहता है, तो आप लोग क्या करोगे, वहां रह पाएगा, वहां मुख्यता होगी। सिर्फ उतना ही करना है, कोई बात नहीं, जब करे तब होगा। भूख लगी है, दो तीन दिन से भोजन नहीं मिला हो और कोई खाना परोसे नुकसान पाओ तो भोजन फिर मुहूर्त निकालता है खाने के लिए, तो खाने आया वही खाने का मुहूर्त है। ऐसे वितरागों के लिए बात तुम्हारे लिए आई, तुम्हारे आत्मकल्याण के लिए आई, वही तुम्हारा आत्मकल्याण का शुभ मुहूर्त है, इससे बढ़िया कौन सा मुहूर्त है, इससे बढ़कर के कोई मुहूर्त होता। बात क्यों सामने आई हमारे सामने, दूसरे लोगों के सामने ये बात क्यों नहीं है, ये सूचित करता है कि तेरे आत्मकल्याण का मुहूर्त है। दुनिया में भी कहवत है कि लक्ष्मी चांदलो करवा आवे तेरे मोरु धोवा जाऊ, तुम्हारी हिंदी में कहीं कहते हैं मोदी फेरना, तो मुंह फेरना तो का सवाल नहीं है, तो वो तो क्या है कि सिलेक्ट करने नहीं देना है, लेकिन तुम्हें ऐसा बोले तो कोई अच्छा लक्ष्मण ये सामना करवा रहे तो मुंह तो साफ कर लो, कि मुंह धोने को भी इतना भी देरी करने है नहीं है। देरी नहीं लगानी, विलंब नहीं करना है, जब लाभ होता है तो लाभ लेने में विलंब कौन सा करना है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे लाभ की बात तो हमको मिली, लेकिन इतना कर लो, थोड़ा इतना काम कर लो, थोड़ा इतना काम कर लो, इतना काम निपट जाएंगे फिर मैं मेरा आत्मकल्याण करूंगा, फिर मैं पूछताछ करूंगा, फिर मैं पूछताछ करूंगा, मैं पढ़ लूं, मैं जान लूं, मैं सुन लूं, पूरी जानकारी हो जाए बाद में पूछताछ करूंगा। तो मूल वो धोने को जा रहा है, सुनते ही पुरुषार्थ चालू हो जाना, तो सदा में लिखे मेरे को देखे सुनते तो सुनते ही प्रयत्न चालू हो जाना, चाहिए प्रयोग हो जाना चालू हो जाना। ये मुंह धोने की बात करता है, उनको अभी लाभ लेना नहीं है, जिसको अभी लाभ लेना नहीं है उसको कभी भी लाभ लेना नहीं है, उसका नियत ठीक नहीं है। ऐसी भूल कभी करना नहीं चाहिए। यह एक रूप आया ना, बात तो यहां से चली है, एकम ऐसा शब्द लिया है आचार्य महाराज ने, श्लोक में एकम शब्द का प्रयोग किया है। कैसा है ज्ञान, एकम एकम मैंने एक रूप है और सदा ही शाश्वत एक रूप है, अनेक रूप है उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, अनेक रूप ज्ञान से ही मेरा प्रयोजन नहीं है, तो फिर दूसरी चीजों से तो मेरा प्रयोजन कहां से होगा, किसी से मेरा प्रयोजन नहीं है। किस कारण से एक रूप है, निर्भेद उदित भेद रूप से वेद वेदक मैंने जो वेदता है वही वेदा जाता है, ऐसा जो समर्थ बना उसके कारण कि जो ज्ञान वेदन में आता है वही वेदन करने वाला है उसी समय, एक ही पर्याय वेदक होती है वही पर्याय वेदन में आने वाली होती है। ऐसा समर्थपना, ऐसा वस्तु का स्वरूप, उस कारण से उसमें अभेदता है, निर्भेदता है, एक रूपता है या निर्विकल्पता है। अनेक रूप ज्ञान को स्वविकल्प ज्ञान बोला है शास्त्रकार ने, और एक रूप ज्ञान को निर्विकल्प बोला है। तो जो ज्ञान का वेदन है वही निर्विकल्प है, जो ज्ञान का वेदन है वो निर्विकल्प है। वेदन में विकल्प नहीं होता, होता है क्या? वेदन में विकल्प नहीं होता। ज्ञान वेदन करता है, और ज्ञान वेदन में वही ज्ञान वेदन में आता है बीच में कोई है ही नहीं, बीच में कोई है विचार मन से होता है लेकिन अनुभव मन से नहीं होता है। देखो सूर समझ में शास्त्र पढ़ करके भी सूर समझ में जो तो ऐसा प्रश्न होता है कहीं ना कहीं कि आत्मा का अनुभव तो अतीन्द्रिय ज्ञान में होता है और मेरे पास अतीन्द्रिय ज्ञान है, मैं क्या करूं, मेरे पास तो इंद्रिय ज्ञान सत्ता पांच इंद्रिय सत्ता मन, लेकिन तेरे पास भी अतीन्द्रिय ज्ञान कब है कि अब भी है, कौन सा है कि वेद्य वेदक ज्ञान जो है वही तेरा इंद्रिय ज्ञान है, उसमें इंद्रिय का निमित्त है। विशेष ज्ञान को इंद्रिय का निमित्त होता है, सामान्य ज्ञान को इंद्रिय का निमित्त होता है। वेद्य मैंने वेदन में आने योग्य, वेदक को मैंने वेदन करने वाला, को मैंने करने वाला, तो ज्ञान स्वयं अनुभूति स्वरूप होने से, वेदक स्वरूप होने से अपने को वेदता है और अपने वेदन में आता है। ऐसा हो ही रहा है भीतर में, सामान्य ज्ञान में ऐसा हो ही रहा है। कैसे पता चले? अवलोकन करने से पता चले। अवलोकन करो भीतर में, किससे अवलोकन करोगे कि ज्ञान विशेष से? तो ज्ञान विशेष जब ज्ञान सामान्य का अवलोकन में आएगा तो ज्ञान विशेष अन्य अवलोकन को छोड़ देगा, तभी तो आएगा नहीं, बस हो गया काम। अंधेरा किसको देखता है, दिखता है? अंधेरा दिखता है ऐसा बोले ना, किसको दिखता है? ज्ञान को दिखता है, तो ज्ञान तो है ही ना। अब कहते हैं कि ज्ञान में सिर्फ ज्ञान को देखो, ज्ञान में ये अंधेरा अज उजाला कुछ भी हो, कुछ भी दिखने में आता है, इसको गौण करके ज्ञान में सिर्फ ज्ञान को ही देखो। वो भी प्रश्न करो कि कैसे देखें, कि देखने का उद्देश्य धारण करके देखो, आप कोई चीज बहुत से बहुत से व्यक्ति है सबसे करीब व्यक्ति बैठे हैं इधर, तो हमको फलाने को आया है कि नहीं आया है वो देखना है, तो एक व्यक्ति के विषय में विकल्प आया विचार आया कि फलाना है कि नहीं है इधर बैठा है कि नहीं बैठा, तो ज्ञान में क्या होगा? एक उद्देश्य धारण करेंगे कि फलाना है कि नहीं है, फिर नजर घुमाएंगे तो बहुत दिखेंगे। तो जो आदमी नहीं दिखता है, शायद हो या नहीं हो, लेकिन नहीं दिखता है वहां तक दूसरे को दिखते हैं, तो दूसरे को देखा क्या नहीं देखा, देखने पर भी गौण कर दिया, दूसरे को देखने पर भी गौण कर दिया, वो तो पद्धति होती है कि नहीं होती है? उद्देश्य को धारण करके देखने की पद्धति है कि नहीं है? पंद्रहवीं गाथा में तो क्या लिया, नमक कि ये जो सब्जी है, दाल है, नमकीन है, उसमें नमक का प्रमाण कैसा है, चखने वाला क्या देखता है? तो उसमें तो मिर्च भी डाला है, खटाई भी डाली है, तरह तरह की चीज डाली है, सबका स्वाद मिश्री भी डाली है, मिठाई भी डाली है, मिठापन भी है, लेकिन अकेला नमक को खारापन तो कैसे देखते हैं? उद्देश्य को धारण करके, उद्देश्य को पकड़ लेते हैं ज्ञान में, हमको अकेला खारापन देखता है तो दूसरा सब स्वाद हट जाता है, देखने में साइड पर रह जाता है। तो रास्ते पे चलते हैं, बहुत से सामने ट्रैफिक आता है, वाहन भी आते हैं, व्यक्ति भी आता है, हम क्यों टकराते हैं? कि हमारा उद्देश्य है कि फलानी जगह जाना है बिना रुके, बिना टकराए। तो जो आता है वो तैर करके चलते हैं। ऐसा ज्ञान में दूसरे में के संबंध को साइड ट्रैक में ले जाना, मैंने ज्ञान को तैरना है, जैसे चलने में हम चलते हैं, वैसे ज्ञान में फिरे, ज्ञान में फिरे तो ब्रह्म में फिर जाएंगे। भाव से अलग हुए तो ब्रह्म से अलग हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। पद्धति तो है ही काम करने की, है अभी भी सतीन्द्रिय ज्ञान है, ऐसा सुन करके उल्लास में आ जाओ कि हमारे पास भी अतीन्द्रिय ज्ञान है, अभी भी अतीन्द्रिय ज्ञान है, उनका हर्ष होना चाहिए। अच्छा मेरे पास अतीन्द्रिय ज्ञान है, अरे अतीन्द्रिय ज्ञान ज्ञान क्या, तेरे पास तो केवल ज्ञान से बढ़कर भी ज्ञान का खजाना भरा है। केवल ज्ञान से बढ़कर के कितना अनंत गुना ऐसा खजाना भरा है कि तुमको तो आनंदित होना है, हर्षोल्लास तुमको आना चाहिए। ये ऐसी परिस्थिति है तो मुझे कोई खेद करने की जरूरत नहीं। क्या कहा, देखो अभेद रूप से ज्ञान ज्ञान भेदता है और ज्ञान वेदन में आता है, वो तो बोलने में भेद पड़ता है, ऐसा नहीं, अभेद रूप से जो वेदता है वही वेदा जाता है। देखो भीतर में, जो वेदता है वही वेदा जाता है, और जब तक दिखने में नहीं आए तब तक देखने की कोशिश करो। आप कहेंगे कि भीतर में दिखने में नहीं आता है, क्या करें? कि नहीं देखने में आए तो जब तक नहीं देखने में आए वहां तक देखने की कोशिश करो। हाथ में से हीरे का नंग गिर जाता है, घर में बैठे बैठे तो हम क्या करते हैं, खोजते हैं, खोजते हैं तो तुरंत नहीं भी मिलता है, सूरज नहीं मिलता है, छोटा सा है तो नजर नहीं आता है, नहीं दिखता है, क्या करे, दिखता नहीं है क्या करे, छोड़ो, ऐसा करता है कि जब तक नहीं मिले वहां तक ढूंढते रहो। और कहां ढूंढोगे, जहां गिर गया है वहां, घर में गिरा है तो आंगन में ढूंढ की जरूरत नहीं है। घर में, उस घर में तो अंधेरा होगा, इस घर में तो अंधेरा नहीं है, ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश में ढूंढने का है। वहां तो अंधेरा होगा तो उजाला करना पड़ेगा, लेकिन हीरा तो ऐसा होता है कि अंधेरे में भी चमकता है, तो आपत्ति नहीं है। ऐसे अज्ञान अंधकार में भी ये चमकता है चैतन्य हीरा, उसको खोजने का परिश्रम करने का है। नहीं मिलता है तो जहां तक नहीं मिले वहां तक खोजने का परिश्रम करो, बस। वो हीरा तो शायद नहीं भी मिलेगा, लेकिन यहाँ जो खोजता है भीतर मां, भीतर में, उसको मिले बिना रहता गारंटेड है वो। ज्योति है, ज्योति क्या, जलहलती ज्योति है, फिर क्यों नहीं मिले। हम भीतर में ज्ञान की जलहलती ज्योति जगमगाट करती है, देखो नजर में आर से नहीं आया हरी, है ना जी, उसे आलसी हो गया है और कोई बात प्रगट निधान, परम निधान प्रगट मुख आगत, जगत उलंघे जाए दिनेश्वर, जाऊं हो रंग धर्म दिनेश्वर, धर्मनाथ भगवान का चरण मिलिया। ज्योति बिना जुए जगदीश जी अंधो अंध बड़ा है। जगदीश बोला उसको, तुम तो जगत का ही से, बिना ज्योति क्या देखता है जगत को, अंधे के पीछे अंधे जाता है, ऐसे क्यों जाता है, थोड़ा तो सचेत हो जाओ, जागृत हो जाओ। बहुत लिखा अभेद रूप से जो वेदता है वही वेदा जाता है, ऐसा है जो समर्थपना, हम इसके लिए समर्थ है, हम असमर्थ नहीं है, शक्तिमान है, अशक्त नहीं है। उसके कारण भावार्थ इस प्रकार है कि जीव का स्वरूप ज्ञान है, वह एक रूप है, जीव का जो स्वरूप ज्ञान है वो एक रूप है, अनेक रूप है वो जीव का स्वरूप नहीं है, ज्ञान होते हुए भी तो जीव का स्वरूप नहीं है। राग तो स्वरूप के विरुद्ध परिणाम है ही, मेल नहीं खाता, इसलिए आश्रम में तीन बात लिया ने, इसमें एक विरुद्धता लिया है, विपरीतपना, मलिनपना, दुष्पना और विपरीतपना। वो विपरीतपना राग का तो है ही, लेकिन एक अनेक रूप ज्ञान है वो भी एक रूप से विपरीत है, स्वरूप एक रूप है, स्वरूप अनेक रूप नहीं है, इसलिए एक रूप उपादेय है और अनेक रूप नहीं है, ऐसा दूसरी बात है कि आत्मा का जो सामान्य स्वरूप, उसमें अनंत गुण है, नहीं तो अनंत गुण के अनेक रूप भी है और अनंत गुण का एक रूप भी है, अनंत गुण का एक रूप है वो द्रव है और अनेक रूप है वो गुण है। तो एक रूप उपाधि है, अनेक रूप उपाधि ये अध्यात्म शैली है। स्वरूप का आश्रय करने कराने की ये शैली है। वस्तु का स्वरूप है वो, तो अनंत गुण भी वस्तु का स्वरूप है और एक रूप भी वस्तु का स्वरूप है, तो भी एक रूप उपाधि है, अनेक रूप उपाधि नहीं। वस्तु का स्वरूप है इसलिए उपाधि है, सो बात नहीं है। इसलिए ज्ञान में भी दो रूप है, एक रूप भी है और अनेक रूप भी है, पर वो ज्ञान का स्वरूप है, फिर भी एक रूप उपाधि है, अनेक रूप उपाधि नहीं है। ऐसा वस्तु के स्वरूप को द्रव्यानुयोग से जान करके भी विवेक करना होता है, एक रूप उपाधि है, अनेक रूप उपाधि नहीं है। वही कहा इधर अनेक रूप है, वो भी एक वस्तु का स्वरूप है, लेकिन हमारा प्रयोजन का हमसे हमारा मतलब है। हमारा प्रयोजन कैसे सिद्ध होता है? एक रूप से होता है, अनेक रूप से नहीं होता। तो हो हमें क्या लेना देना, हमको एक रूप से लेना देना, ऐसी बात है। हम खाद्य पदार्थ में स्वाद देखते हैं, रंग रूप क्यों नहीं देखते हैं? हमारा प्रयोजन स्वाद से है, रंग से नहीं है। हमको भूख लगी है, स्वाद चाहिए, स्वादिष्ट बना हो तो अच्छा तरह से खाएंगे, तो उसमें हम कलर को क्यों नहीं देखते हैं? देखते हैं क्या? कोई कढ़ी में हल्दी डालते हैं और कोई नहीं डालते हैं, डालते हैं तो पीली होती है, नहीं डालते हैं तो सफेद होती है। हमको स्वाद से मतलब है या धोली पीली से मतलब है? स्वाद से मतलब है। लड्डू होते काले तल का, धूमकारी होता है, तिल तो सफेद भी होते हैं और लाल भी होते हैं और काले भी होते हैं। तिल तिल जाते के आते हैं, तिल कलर के आते हैं। कहते हैं कि काले तल है वो स्वास्थ्य के लिए अधिक गुणकारी है और सफेद है उसका रूप अच्छा है, फिर हम वो काला कैसे खाते हैं? कि हमको हमारा प्रयोजन से मतलब है, काला सफेद से मतलब नहीं है। और काले तल खाने से शरीर को काला होने वाला नहीं है, ना सफेद तल खाने से शरीर सफेद होने वाला है, इससे तो कोई शरीर में तो फर्क पड़ता नहीं है। जो गुणकारी है वो प्रयोजन की बात है। तो हमको गुण में लाभ कैसे होता है? हमको गुण माने लाभ कैसे होता है, इतना ही देखना है। तो कुछ चाहिए हमारा प्रयोजन तो गुण से होता है। क्या नहीं होता है? तुम्हें अपना प्रयोजन भाषित नहीं हुआ, यहाँ प्रयोजन भाषित नहीं हुआ, गलत प्रयोजन भाषित हो रहा है, इसलिए गलती छोड़ो तो भूल वगैरह का काम होगा। गलती भी रखना है और बिना भूल का काम होना है, वो बात तो बनने वाली नहीं। भावार्थ में क्या लिखा? तो भावार्थ इस प्रकार है कि जीव का स्वरूप ज्ञान है, वह एक रूप है। ज्ञान है उतना नहीं लिखा, ज्ञान है वह एक रूप है। जो साता असाता कर्म के उदय से सुख दुख रूप वेदना होती है, वह जीव का स्वरूप नहीं है। है ही नहीं जीव का स्वरूप होता है, वो तो पुद्गल का स्वरूप है, अजीव का स्वरूप है। और इसका ज्ञान भी अनेक रूप हो जाएगा, साता साता का। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा अपना एक रूप ज्ञान का अनुभव करने वाला सम्यक दृष्टि जीव को रोग उत्पन्न होने का भय नहीं होता। शरीर का रोग को वो जानेगा तो ये रोग मेरे में हुआ नहीं है, रोग शरीर को हुआ है मुझे रोग हुआ नहीं है, इसलिए मुझे रोग का भय नहीं है, रोग का दुख भी मुझे हो गया, रोग होने पर भी सुखी हो गया, रोग होने पर भी सुखी हो गया, और अज्ञान दशा में रोग नहीं होता है तो भी दुखी होता है। हाँ वो तो अगर अमर नहीं हो गया तो रोग होने वाला है ही नहीं, वो तो है ही अगर अमर बस उनको अनुभव में ले लिया, और रोग नहीं है अज्ञान दशा में तो रोग होगा तो उसका भय में जीता है। चलो प्रिजर्वेटिव दवाइयाँ ले लो, वो ले लो, वो खा लो, वो पी लो, रोग नहीं हुए, अरे कुछ भी खाओ कुछ भी पियो असाता का उदय आएगा, परमाणु पलट जाएगा, एक सेकंड में परमाणु पलट जाएगा पूरे शरीर के। इस तरह से ज्ञानी को रोग का वेदना का भय होता है, चाहे हुए नहीं हुए भय नहीं होता है, ये ज्ञान का प्रभाव है, अन्य ज्ञान का प्रभाव है, तो यही सुखी होने की सही पद्धति ही है।